بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت نامہ, میں ہوں توقیر عباس. ناظرین, پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو کہ تقریباً 18 سالہ پرانا منصوبہ ہے, اس وقت پاکستانی سیاست کا محور بنتا جا رہا ہے. حکومتی اراکین سمیت حزب اختلاف کے بیشتر اراکین اس مسئلے پر حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر کے اس منصوبے کو کمپلیٹ کیا جائے. ناظرین, یہ منصوبہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, یہ بہت عرصہ پہلے شروع کیا گیا تھا. تقریباً 1994 میں پاکستان اور ایران کے درمیان بحث چلی اس مسئلے پر, اور 1995 میں یہ منصوبہ ایک ایگریمنٹ ہوا ابتدائی طور پر, جس میں پاکستان اور ایران دو ملک ہی شامل تھے. بعد میں ایران نے پروپوزل پیش کیا جس میں انڈیا کو بھی شامل کیا گیا. 1999 میں انڈیا اور ایران بھی, ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. تو یہ تین ملک اس میں شامل ہو گئے اس پائپ لائن منصوبے میں. اس کے بعد یہ مسئلہ طوالت اختیار کیے کر گیا اور یہ چلتا گیا, ڈسکشن ہوتی رہی, لیکن کوئی فائنل ڈیسیجن اس پہ نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ ایران کا جو خطے کے اندر یہ جو ایک رول تھا, اس نے اب دوسرے ملکوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی. 2008 میں ایران نے چائنا کو یہ زور دیا کہ وہ بھی اس منصوبے میں پارٹیسپیٹ کرے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو 2010 میں آفر کی ایران نے کہ وہ گیس پائپ لائن منصوبے میں شامل ہو. 2008 میں امریکہ اور انڈیا کی سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی, جس میں دونوں ملکوں نے ایک نیوکلیئر معاہدہ کیا. اس کے بعد 2009 میں انڈیا جو ہے اس نے اس پروجیکٹ سے وتھڈرا کیا. پھر وہی صورتحال, دونوں ملک رہ گئے, پاکستان اور ایران. دونوں ملکوں نے اس پروجیکٹ پر بہت سارے ایگریمنٹ دوبارہ کیے. 2010 میں ایک ایگریمنٹ کیا گیا انکرا میں, جس میں دونوں ملکوں نے یہ طے کیا کہ 2014 تک یہ پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا, اور دونوں ممالک اپنی اپنی جتنی بھی سرحدی علاقے ہیں وہاں تک, بارڈر تک وہ پائپ لائن بچھائیں گے. 2011 جولائی میں ایران نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے علاقے یا اپنی ٹیریٹری میں جتنی بھی ان کے حصے میں پائپ لائن آتی تھی وہ انہوں نے مکمل کر لی ہے. اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر پاکستان اس پائپ لائن کو 2014 تک مکمل نہیں کر پاتا تو اس کو یومیہ $1 ملین جو ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. ناظرین, اس سارے معاملے پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمد ریحان رضا نقوی, انرجی ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ گیس اینڈ آئل سیکٹر میں گہرا تجربہ ہے ان کا, جرنلسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناروے سے. ہم ان سے اس تمام مسئلے پر تفصیلی بحث کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کتنی کتنی پیچیدگیاں ہیں اور کن مسائل کا حکومت پاکستان کو سامنا ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے جو پریشر اس وقت بلڈ ہو رہا ہے. 2010 میں باقاعدہ طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ نے پاکستان کو اس پروجیکٹ سے کہا تھا کہ وہ یہ پروجیکٹ ترک کر دے, لیکن پاکستان نے اس کو کنٹینیو کیا. ابھی حالیہ دور میں ہلری کلنٹن کی جانب سے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا گیا اور سینکشنز کی کہا اور دھمکی دی گئی کہ اگر وہ یہ پروجیکٹ کینسل نہیں کرے گا یا اس میں سے وتھڈرا نہیں ہوگا تو پاکستان کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سے انرجی ایکسپرٹس یا پاکستان میں جتنے بھی بہت سے مبصرین ہیں, بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ अच्छा प्रोजेक्ट है और फिजिबल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा और टेक्निकली फाइनेंशली भी बहुत फिजिबल है। पाकिस्तान को इसको इसमें आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान का जो स्टैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेशर है उसको उसको पाकिस्तान रिजिस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म हैं और जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं नरबानी खर साहिबा, उनके बयान से तो यही मालूम होता है कि पाकिस्तान अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। इसके अलावा बाज़ नाकिदीन की तरफ से ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है और ईरान जो है वो उसकी सूरत हाल इकॉनमी के हवाले से इतनी बेहतर नहीं है कि ईरान के साथ इतना लंबा प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाए, और वो उनके अपने नज़रियात के मुताबिक एक और जो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट है जिस पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो टपी एक प्रोजेक्ट यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इस पर काम करे पाकिस्तान, और उसके अमेरिका और जितने भी यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ ये प्रोजेक्ट ना करे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट भी जेरे गौर है, वो कतर के साथ एलएनजी के हवाले से है, वो भी सजेस्ट किया जाता है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान रज़ा नकवी, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम तौफीक भाई।
डॉक्टर साहब, आपने भी आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपका तवील तजर्बा भी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आप हमें थोड़ा सा इस जो ये जो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
जी, आपने एक बहुत अहम टॉपिक पर यह प्रोग्राम रखा है आज। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की हिस्ट्री जो है वो कहा जाता है कि 1950 की दहाई में एक पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर थे मालिक आफ्ताब अहमद खान साहब, जिन्होंने ये आइडिया पेश किया था और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पर्शियन पाइपलाइन के नाम से। बहरहाल ये आर्टिकल मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने ये आइडिया दिया था और ये आइडिया फिर कुछ दहाइयों तक यकीनन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर 1989 में इंडिया के राजेंद्रा पचौरी, जो के बाद में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के सदर भी रहे, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था आईपीसीसी के साथ, उन्होंने इस आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज किया। उस वक्त के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के थे अली शम्स, उनके साथ मिलके ये सब मालूमात इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। बहरहाल सही मानों में ये प्रोजेक्ट, जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, 1990 और फिर 1994 में शुरू हुआ और उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ 1995 में। एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान और ईरान, उस वक्त तक इंडिया इसमें शामिल नहीं था। हालांकि अचंभे की बात यह है कि इंडिया के एक एक्सपर्ट ने इस आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में कोशिशें की थी। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट चलता रहा, आप इसकी हिस्ट्री तो बता ही चुके हैं प्रोग्राम के शुरू में नाजरीन को। बहरहाल बात आ गई 1999 और फिर उसके बाद 1999 में जब इंडिया ने ईरान के साथ एक मुआहदा कर लिया कि नेचुरल गैस ईरान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से ईरान आएगी। एक अहम जो संग मील था वो 2004 में एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट थी, जिसने इस आइडिया को एक पीस एंड प्रोस्पेरिटी आइडिया करार दिया, तो इसको फिर पीस पाइपलाइन भी कहा जाने लगा। और ईरान
ये प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ 2004 में।
जी, प्रोजेक्ट रिवाइज तो नहीं हुआ, उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखा गया कि ये जो है इलाके में नेशंस के दरमियान पीस कायम अमन कायम करेगा, दोस्ती भाईचारा कायम करने में मददगार साबित होगा, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा जो इन इन ममालिक के आवाम के लिए, मसलन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के आवाम के लिए। तो इसको पीस पाइपलाइन या पीस प्रोजेक्ट भी कहा जाने लगा, और हत्ता कि अभी भी आपको फारसी मीडिया में ईरान में इसको सुलह की पाइपलाइन के नाम से भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो ये बहरहाल सिलसिला चलता रहा, और फिर 2007 में कुछ प्राइसिंग सेट हुई, और उस जमाने में प्राइसिंग जो सेट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान ने जो ईरान से मुआहदा किया था उसमें तकरीबन $5 एक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्योंकि नेचुरल गैस को तवानाई के हिसाब से बेचा जाता है कि इसमें तवानाई की मकदार कितनी है। बहरहाल उस वक्त $5 तय की गई थी, जो कि अब बढ़कर काफी ज्यादा हो चुकी है, तकरीबन $11 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और फिर 2008 में आपने तफसील से बता दिया, लिहाजा मैं ज्यादा तफसील में तारीख की नहीं जाना चाहता। इंडिया जो है वो 2009 में उसने एक डील कर ली अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, 2010 में वो निकल आया, और उसने कहा कि प्राइसिंग की वजह से और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम इस प्रोजेक्ट से निकल रहे हैं। मामला फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रह गया, और पाकिस्तान को जो कि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने कंटिन्यू रखा, और सूरत हाल अब यह है कि अमरीका का प्रेशर है कि इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो जाया जाए।
ठीक, अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जो मेजर फंडिंग थी वो पहले चाइना के एक सेंट्रल बैंक ICBC कर रहा था, लेकिन ये जो सेंक्शन अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो लगाए जाने का खदशा है, इसके पेश नज़र उन्होंने पुल आउट कर दिया। फिर इसके बाद OGDCL और पाकिस्तान का जो बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ने भी बैकआउट किया। तो आप क्या समझते हैं कि फंडिंग का कितना प्रॉब्लम आएगा अगर पाकिस्तान को 2014 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है हर हाल में? तो
जी तकरीबन $1.5 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। आपने बताया कि चाइना का बैंक जो है उसने विड्रॉ कर लिया, हालांकि चाइनीज कंपनियां ईरान में काम कर रही हैं, और कंपनियों के पास बहुत से तरीके होते हैं कि वो सैंक्शंस को अवॉइड कर सकें या किसी और तरीके से टू वर्क अराउंड द सैंक्शंस। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आमतौर पर उनकी कोशिश होती है कि वो कोई रिस्क ना लें, क्योंकि उनकी ट्रांसैक्शंस अमेरिका के साथ डायरेक्ट होती हैं, और सैंक्शंस में ये बात शामिल है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसैक्शंस भी ईरान के साथ नहीं कर सकता। इस वजह से वो डरते हैं, और उनकी बेशुमार इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत सारा लेन देन होता है अमरीकी इदारों के साथ, इसलिए चाइनीज बैंक जो है वो पुल आउट उसने कर लिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शायद इसी वजह से पुल आउट हुआ होगा। अब रह गई बात $1.5 मुहैया करने की, तो ईरान ने कहा है कि वो भी दो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ईरान ने कहा है कि $250 मिलियन वो पाकिस्तान को देने को तैयार हैं, और एक रिपोर्ट मेरी नजर से यह भी गुजरी है कि $500 मिलियन ईरान देने को तैयार है, यानी कि एक तिहाई हिस्सा ईरान देने को तैयार है। बहरहाल अगर फर्ज कर लीजिए कि 250 मिलियन ईरान से आ जाएंगे, या अगर कुछ भी नहीं आता, मसलन 1.5 बिलियन पाकिस्तान में खुद करना है, तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। ये इस तनाजुर में कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है।
अच्छा, एक और बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि ईरान जो है वो डिफॉल्टर है, इंडिया से चावल खरीदे उसके पैसे वो नहीं दे पाया, इसी तरह सिंगापुर की कंपनियों से पाम ऑयल लिया लेकिन उसके पैसे वो नहीं दे पाया, यूक्रेन से गंदम ली उसके पैसे नहीं दिए। तो डॉलर तो कह रहे हैं कि ईरान के पास है ही नहीं, तो $250 मिलियन वो पाकिस्तान को कैसे देगा, तो जिनका उन्होंने ऐलान कर दिया है?
अच्छा, इसमें दो तीन बातें हो सकती है। नंबर एक ये कि वो डिफॉल्टर नहीं है, ईरान के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, और ईरान ने अगर किसी से चावल लिए हैं या दूसरी चीजें या पाम ऑयल या गंदम या और चीजें, तो ईरान ने एक और सिलसिला शुरू किया है जिसको हम बार्टर ट्रेड का नाम देते हैं, कि वो चीजों के बदले चीजें, इसका उन्होंने सिलसिला आजकल शुरू किया हुआ है। तो अगर वो किसी मुल्क से चावल ले रहा है तो उसके बदले हो सकता है कि वो अपनी मादनियात या ऑयल या गैस दे रहा हो, या मसलन ऑयल दे रहा हो। 250 मिलियन डॉलर अगर ईरान पाकिस्तान को नहीं भी देता है तो क्या ये इस बात की दलील है कि हमें उनके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनके पास नेचुरल गैस रिजर्व्स तो हैं और उन्होंने पाइपलाइन भी तकरीबन मुकम्मल कर दी है, सिर्फ आखिरी 270 किलोमीटर रह गए हैं और वो भी वो कहते हैं कि हम 2 साल में मुकम्मल कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की के इकोनॉमिक हालात ऐसे होंगे कि जिस तरह के पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर और कुछ मीडिया पर्सन्स जो कह रहे हैं कि ईरान का ये हाल, इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, इसलिए उनके साथ इस डील में नहीं हमें दाखिल होना चाहिए, मेरे ख्याल में कि ये बात कुछ खास दुरुस्त नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेनेजुएलियन कंपनीज जो है वो ईरान के साथ काम कर रही हैं, रशियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, मलेशियन और बेशुमार कंपनियां हैं जो कि ईरान में काम कर रही हैं। और ये जिस कंपनी को पाकिस्तान ने एक फिजिबिलिटी स्टडी का ठेका दिया है, दफ्तर कीश के आइलैंड मौजूद है ईरान में, तो ये कोई बात वजन नहीं रखती कि ईरान के पास वसाइल नहीं है या वो डिफॉल्टर हैं या उनके इकोनॉमिक हालात खराब हैं। और फिर एक नजर मेरी एक खाली नजरों से कुछ दिन पहले गुजरी कि क्रिस्टीन लगार्ड जो आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि ईरान की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो खित्ते के ममालिक के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात कोई खास वजन नहीं रखती।
अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान पर दबाव है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा तर्क कर दे वरना उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मायदा हुआ था ये सैंक्शन से पहले था, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो यूनाइटेड नेशन की 1929 कहा जाता है कि एक रेजोल्यूशन है जिसमें ये पाबंदियाँ दोनों ममालिक पर लग सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बायलैटरल रिलेशन पर वो उन पाबंदियों का इतलाक होगा या जो पाबंदियाँ बाद में लगी थी, मुआहदा पहले हुआ था तो बाद वाली पाबंदियाँ जो हैं उस मुआहदे पर असरअंदाज नहीं होंगी?
जी ये मामला इतना सीधा नहीं है। जहां तक रेजोल्यूशन 1929 की बात है, उसका मेन फोकस जो है वो न्यूक्लियर और इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर का जिक्र तकरीबन मेरी नजर से नहीं गुजरा कि कोई खास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर का उसमें जिक्र किया गया, कोई पेरिफेरल जिमनी तौर पर उसका जिक्र आ गया हो तो आ गया हो। लेकिन जो लेटेस्ट राउंड है सैंक्शंस का, उसमें खास तौर पर ऑयल सेक्टर को अटैक किया गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बैंक्स को अटैक किया गया ईरान के। अब रहा ये सवाल के जो हमारा मुआहिदा था, जो पाकिस्तान का मुआहिदा था ईरान के साथ, वो तो सैंक्शंस लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस से पहले हुआ था, तो ये इसका जवाब तो कोई यकीनन कोई माहिर कोई कोई वकील या कोई माहिर जो इंटरनेशनल लॉ का माहिर हो वही बंदा इसका जवाब दे सकता है। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉयर्स को हायर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं या हायर कर लिए हैं अब तक, जो इस बात का जायजा लेंगे। बल्कि पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने बयान करेंगे कि ये मुआहिदा सैंक्शंस के अंडर नहीं आता। पाकिस्तान का मौकफ अभी तक यही है कि ये सैंक्शंस के जैल में नहीं आता, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने, अमेरिका की वजीर खारजा, उन्होंने कई मरतबा ये बात दोहराई है कि ये सैंक्शंस के जुमरे में आता है। तो अब ये तो इंटरनेशनल लॉयर्स का पैनल जो पाकिस्तान ने हायर किया है, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं।
इसके अगर थोड़ा सा मुवाजना कर दें दोनों प्रोजेक्ट्स, तीनों प्रोजेक्ट्स बल्कि जो हैं, अमेरिका ये कहता है कि ईरान के साथ ये प्रोजेक्ट ना किया जाए, बल्कि जो टपी है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, वो गैस पाइपलाइन मंसूबा वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा एक और जो एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कतर से मंगवाने का है, आप इन तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर इनका मुवाजना करें तो कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फिजिबल लगता है आपको? फाइनेंशियली देखें, लॉजिस्टिकली देखें, तो पाकिस्तान के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है?
जी, एक तो साफ सी बात है जो सबको नजर आ रहा है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन ही सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। अब इसके कुछ दलाइल होने चाहिए। उसके दलाइल ये हैं, सबसे पहले तो आप कॉस्ट देखिए। कॉस्ट पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मौजूदा कॉस्ट जो लेटेस्ट कॉस्ट है वो है $11 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और जो तापी है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसकी $13, और जो एलएनजी प्रोजेक्ट है उसकी 18। ये फिजिबिलिटी स्टडी बेस्ड नंबर्स है, $18। तो कम से कम ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है वो कम से कम $2 तो सस्ती है तापी से। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखते हैं, लार्ज ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स की या कोई और प्रोजेक्ट्स हो, तो उसमें देखे जाते हैं 5 फैक्टर्स। एक आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, मतलब उसको कहा जाता है टीप ऑफ रिस्क असेसमेंट, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल रिस्क। इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल रिस्क मिनिमल हैं क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान असलियत से जो गैस आएगी बिल्कुल क्लीन नेचुरल गैस है, यानी प्रोसेस्ड नेचुरल गैस है, बिल्कुल रेडी टू यूज नेचुरल गैस है। और फिर ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो टेक्निकल तो मिनिमल है, पीछे रह गए इकोनॉमिकल, कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल। तो इनमें से भी इकोनॉमिकल, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक दूसरे से पैवस्ता है। तो बात फिर वापस पॉलिटिकल रिस्क पर आ गई। अब इस प्रोजेक्ट के साथ पॉलिटिकल रिस्क हैं जिसमें आप सिक्योरिटी रिस्क को भी शामिल कर लीजिए, कमर्शियल और इकोनॉमिकल को भी उसमें शामिल कर लीजिए। मैं इसकी जानब थोड़ा सा फिर वापस आऊंगा इस प्रोजेक्ट की जानब। अब आपको टापी के बारे में बता दूं, टापी का यह है कि अव्वल तो वैसे ही वो $2 ज्यादा महंगा है, लेकिन वो एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद फिर तुर्कमानिस्तान, यानी कि आपका बीच में एक इंतहाई हॉस्टाइल टेरेन है जो, और एक इंतहाई अनस्टेबल कंट्री है जो है अफगानिस्तान। तो इसका मुवाजना करें ईरान के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान रज़ा नकवी, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा आपका तवील तजर्बा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस पाइपलाइन की हिस्ट्री और जो पाबंदियां लगाई जाने वाली हैं या जो लगाई गई हैं ईरान पर, उसके क्या असरात होंगे इस पाइपलाइन पर। एक और सवाल जो मेरे जहन में अभी है वो ये है कि अमेरिका के साथ हम देखते हैं कि अब ताज़ा तरीन खबरों में ये भी आया कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो पाकिस्तान ईरान गैस मंसूबा जो है इसको तर्क करे, बल्कि हम उसको कुछ ज़रूरियात जो एनर्जी की हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ऑफर की है सऊदी अरब ने। और शर्त ये लगाई है कि ईरान के साथ वो ये गैस पाइपलाइन मंसूबा तर्क कर दे। आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका की ही डिक्टेशन पर हो रहा है और सऊदी अरब क्यों नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए?
जी, ये बहुत अहम आपने एनर्जी पॉलिटिक्स का सवाल, रीजनल पॉलिटिक्स का सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। जो खबर आई है वो ये है कि सऊदीया ने कोई पैकेज पेश किया, जो लेटेस्ट खबर आई थी, और कहा जा रहा है कि उसमें ऑयल फैसिलिटी और लोन, ऑयल फैसिलिटी और लोन। अब उसकी तफसीलात नहीं, ऑयल फैसिलिटी से क्या मुराद है, कि ऑयल इंपोर्ट होगा फ्री सब्सिडाइज या क्या। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ये मसलन ऑयल है तो तो क्या वो नेचुरल गैस का नेवल बदल हो सकता है? पहले तो ये कि ये उसका नेवल बदल हो ही नहीं सकता, नंबर एक, इस वजह से कि नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है, चीप फ्यूल है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है नेचुरल गैस को बर्न करने के लिए, और बहुत तेजी से कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स जो गैस टर्बाइन स्टीम टर्बाइन के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, वो बहुत तेजी से 24 से 36 महीने के अंदर खड़े किए जा सकते हैं लार्ज पावर प्लांट्स। तो नेचुरल गैस बहुत सारे मसाइल का हल है। फिर नेचुरल गैस हाई टेम्परेचर देती है जो कि इंडस्ट्री को चाहिए होता है, खासतौर पर मेटल इंडस्ट्री को। बहरहाल बेशुमार फायदे हैं, मैं ज्यादा डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो ये तो टेक्निकली नेचुरल गैस को एक एज हासिल होगा ऑयल के ऊपर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। दूसरी बात यह कि सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि ये वायदा हो जाए। अगर ये वायदा मटेरियलाइज हो जाता है और वाकई नेचुरल गैस आने लगती है ईरान से पाकिस्तान के लिए, तो इस पाइपलाइन को आप तकरीबन कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तवानाई की शह रग होगी ये पाइपलाइन। ऐसे बुरे हालात में जब रोज मुजाहरे हो रहे हैं और इनमें शिद्दत भी आ सकती है, तो एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ, तो ये पाइपलाइन तो पाकिस्तान के लिए शहरत की हैसियत रखेगी। अब सऊदी अरब और अमेरिका क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान की रवानाई की शहरत ईरान के हाथ में हो? इससे ये होगा कि एक तो ईरान को इकोनॉमिक फायदे, दूसरा ईरान एक रीजनल पावर तो है ही, उसको रीजनल पावर तस्लीम करना पड़ेगा, ईरान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ जाएगा जैसा कि उसका और हमसाए ममालिक में बढ़ चुका है। वो एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, अब वो लिक्विड प्रोडक्ट्स अपनी सीरिया को एक्सपोर्ट करने का मुआहदा कर रहे हैं और कई ममालिक को अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी तशवीश यही होगी कि ईरान का इलाके में एक इंतहाई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल रोल बन जाएगा और ये उनको किसी तरह भी गवारा नहीं हो सकता।
पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान ने जितना रिजिस्ट किया है, यूएस जो हालिया प्रेशर डाला गया है पाकिस्तान पे कि वो इस मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान साबित कदमी के साथ चल रहा है और जो बयानात हमने देखे हैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर के या वज़ीर आज़म के, उसमें यही था कि पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो बाहर की डिक्टेशन नहीं लेगा। आप क्या समझते हैं कि बाकी मामलात में तो पाकिस्तान उनके आगे झुक जाता है लेकिन इस मामले पर अभी तक डटे हुए हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग है पॉलिटिकली, आप इसको थोड़ा सा बताएं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है क्या वो अपोजिशन के प्रेशर में है या क्या समझते हैं कि वो यूएस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं?
जी ये एक इस सवाल की भी बहुत सारी है, इसके जवाब की जहात और डायरेक्शंस हो सकती हैं। बहुत ही दिलचस्प सवाल किया आपने। अभी तक पाकिस्तान जो आमतौर पर तासर है कि वो अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है अमलन, बाद लोगों का ये तासर है, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहे हैं और तवातुर से पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और इसके लिए कंपनीज, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स एक बाकायदा सेपरेट कंपनी बना दी गई है और मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि हम हर सूरत में इसको कंप्लीट करेंगे। एक तो ये पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है। सबसे पहले तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से मामले को देखा जाए तो पाकिस्तान को इसकी जरूरत है और पाकिस्तानी हुकूमत इसका एहसास कर रही है कि हमें ये प्रोजेक्ट अपनी कौम के बेहतरीन मफाद में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन दूसरी जो एक एक बात हो सकती है वो ये है कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन बहुत ज्यादा है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना चाहिए, बहुत प्रेशर भी है आवाम की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से, दानिशवरों की जानिब से, ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से, सिवाय चंद एक दानिशवरों को छोड़ के जो के कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को नहीं होना चाहिए, तकरीबन कंसेंसस है कि तो हो जाना चाहिए, तो ये एक दबाव हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि हुकूमत चाह रही हो कि फिलहाल तो इस मामले को उठाया जाए ताकि पॉइंट स्कोरिंग की जाए और जब इलेक्शंस हो जाए, इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा इसको, मामले को फिर दबा दिया जाएगा। और जो चौथा, जो मेरा जाती ख्याल है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत की حکومت کہہ لیجئے یا پاکستان کی ایک تاریخ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، اور پاکستان ان تعلقات کو یکسر ایک پروجیکٹ کی وجہ سے بالکل شو ٹرن لے کے خراب نہیں کر سکتا، جبکہ اس میں ایران بھی انوالو ہے اور امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کی جو ہیں کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. تو پاکستان یہ ممکن ہے کہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہو امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں ان سے بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے، مثلا ڈرون حملوں کو رکوانے کے لیے یا مزید امداد حاصل کرنے کے لیے یا مزید انفراسٹرکچر. پاکستان امریکہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ پروجیکٹ نہیں ابھی نہیں، لیکن بعد میں ابھی وہ پریشرائز کر کے کہیں کہ ہاں ہم اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ ہمیں اس سیکٹر میں صحیح معنوں میں اگر آپ ہماری مدد کریں، جیسے ہلری کلنٹن نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم ان کی انرجی سیکٹر میں مدد کریں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کچھ سالوں سے پاکستان کی انرجی سیکٹر میں مدد کر رہا ہے، لیکن وہ کوئی نظر نہیں آ رہی جو کوئی ایسا انفراسٹرکچر جس کی وجہ سے کوئی بجلی کا شارٹ فال کم ہوا ہو، بجلی پروڈکشن بڑھی ہو اور انڈسٹریز چلنا شروع ہو گئی ہوں. تو یہ تین چار وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ واقعی حکومت سنسیئر ہو اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ صرف بلیک میلنگ کر رہی ہو اور اس کے نتیجے میں امریکہ سے کچھ اور فوائد حاصل کرنا چاہتی ہو.
جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں اگر پاکستان 2014 تک یہ پائپ لائن اپنے حصے کی کمپلیٹ نہیں کرتا تو وہ جو ابلیگیشنز ہیں وہ جو ایک ایگریمنٹ میں دی گئی ہیں ان کو فلفل نہیں کرتا تو پاکستان کو یومیہ $1 million جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا.
جی بالکل، یومیہ $1 million جرمانے کا مطلب ہے کہ 3 سال میں $1 billion.
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک طریقے سے پھنسا ہوا بھی ہے کہ اس کو یہ ادھر سے اگر نہ کیا تو جرمانہ بھی ہوگا؟
پاکستان اس وقت کافی مشکل کا شکار ہے اس معاملے میں. اس معاملے میں اگر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرتا تو جرمانہ ادھر سے، اگر کمپلیٹ کرے تو امریکہ کا پریشر. یعنی کہ پاکستان کو اس وقت ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹسمینشپ اور ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اس کا اپنا مفاد جو ہے وہ مقدم رہے اور وہ ان سارے مسائل سے بھی نکل آئے اور پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لے، اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کر لے اور امریکہ سے بھی کسی طرح سے پیچھا چھوڑا لے. تو اس کے لیے بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ڈپلومیسی اور سفارتکاری کی ضرورت ہوگی جو کہ نظر نہیں آتی.
میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں پھر، جو آپ نے بات کی ڈپلومیسی کی، لابینگ کی، انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے پابندیاں ہوئی ہیں، یورپی یونین کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ تعلقات اس طرح بنائے اور یہ پروجیکٹ جو ہو رہا ہے اس کے تو بہت خلاف ہیں، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور لابینگ کرنے پڑے گی اس معاملے کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ہماری جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ ہم یہ جو فیزیبل پروجیکٹ ہے اس پر ہی اکتفا کریں، یا دوسرا جو پروجیکٹ ٹاپی جو سجیسٹ کیا جاتا ہے اس کی طرف نہ جائیں؟ تو ڈپلومیٹیکلی یا ڈپلومیسی جو ہوتی ہے پاکستان کی اس میں کمزوریاں ہیں اور ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو طریقے سے اپنا کیس جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے؟
جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا. آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی مثال لیجئے، ہندوستان بھی تو انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ہندوستان بھی تو انڈیا سے سوری ایران سے ہندوستان بھی تو ایران سے آئل پروڈکٹس خرید رہا ہے، آئل خرید، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری اتنی انرجی کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. ان کی بھی تو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ای یو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلقات ان کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہماری نیشن کا، ہماری قوم کا جو ہے وہ انٹرسٹ اسی میں ہے اور وہ چل رہے ہیں. تو اب پاکستان بھی اگر اپنی مضبوط ڈپلومیسی استعمال کرے تو ای یو کو، امریکہ کو، یو این میں ہر جگہ پر پاکستان یہ بات जो है वो साबित कर सकता है कि हमें इस प्रोजेक्ट की जरूरत है इन द लॉन्ग रन, और ये हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, और उस और एट द सेम टाइम दुनिया के साथ ताल्लुकात, जो भी उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं या ईयू के साथ ताल्लुकात हैं, उनको भी उन पर भी जरब ना पड़े। और इसके लिए यकीन बहुत मजबूत किस्म की डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर्स और थिंक टैंक्स जो उनको उनके मुशीर हों, उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर अगर तीन फरीक देखे जाए, एक ईरान है, एक अमेरिका है और एक पाकिस्तान है। अमेरिका की वजीर खारजा सेनेटर हिलरी क्लिंटन है, ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर सालेही हैं, दोनों इंतहाई एक्सपीरियंस लोग हैं, और पाकिस्तान की वजीर खारजा जो है वो हिना रब्बानी खैर है, और वो तो अपने पेशरो शाह महमूद कुरैशी से भी कई गुना कम एक्सपीरियंस्ड हैं, और इंतहाई वो कम उम्र, नौ उम्र और इन एक्सपीरियंस नजर आती हैं। यकीनन वो पाकिस्तान का मौका बयान कर रही होंगी, लेकिन मिसाल देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के पास डिप्लोमेट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, यकीनन बहुत मजबूत किस्म के डिप्लोमेट्स और सफारतकार मौजूद होंगे और हैं।
अच्छा, एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर इस मसले को पार्लियामेंट में लाए और वहां पर करारदाद के जरिए ये बहस सामने लाई जाए दुनिया के सामने कि एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है इस आईपी का जो प्रोजेक्ट है इस पर, वो कितना इफेक्टिव साबित होगा अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट से ये करारदाद मंजूर करवा ली जाए, एक बिल पास करवा लिया जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी पार्लियामेंट अगर इस बिल को मंजूर करे, करारदाद मंजूर करे और फुल बैकिंग पे, यानी ओपोजिशन भी, रूलिंग पार्टीज भी और सब, और हफ्ता के एक रेफरेंडम भी करवा सकता है पाकिस्तान आम पब्लिक। जब कोई ऐसे मामलात आ जाए तो क्या होता है कि जैसे स्वीडन में रेफरेंडम हुआ था, स्वीडन में रेफरेंडम हुआ कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दें, वो रेफरेंडम। इसी तरह से नॉर्वे ने रेफरेंडम कराया था कि हम ईयू का हिस्सा बने या ना बने। तो इस तरह के रेफरेंडम होते रहते हैं दुनिया के ममालिक में उन इश्यूज के ऊपर जो कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं थे इलेक्शंस के बाद। पाकिस्तान अगर ये रेफरेंडम करवा करके और उसमें एक मेजोरिटी पाकिस्तानी यकीनन इस प्रोजेक्ट को चाहती है, तो दुनिया को बता सकता है पाकिस्तान कि आप तो जमहूरियत के अलमदरदार हैं, तो आप देखिए हमारी आवाम इस प्रोजेक्ट को चाहती है, हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट इस प्रोजेक्ट को चाहती है, प्रोजेक्ट
कामयाब हो सकता। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और पाकिस्तान को गैस मिलना शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान में वो जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि सीएनजी के तौर पर गैस यूज हो रही है, तो क्या समझते हैं कि फिर एनर्जी क्राइसिस फिर दोबारा जल्दी नहीं आ जाएगा?
जी, सीएनजी एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल में और माहिरीन एनर्जी के एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये एक इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा। नेचुरल गैस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आप डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सीएनजी में इस्तेमाल करना, सीएनजी आप यकीनन आप इसको सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएनजी के लिए क्लीन फ्यूल है, आपकी पोल्यूशन कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नेचुरल गैस को इस्तेमाल करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी ढूंढनी पड़ेगी।
अच्छा, पाकिस्तान अगर ईरान से गैस लेता है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितने एनर्जी के जो जखायर हैं वो पड़े हैं और पाकिस्तान उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं करेगा अगर पाकिस्तान को जरूरत है? तो पाकिस्तान को क्या क्या दुश्वारी है कि वो अपने जखायर को एक्सप्लोर नहीं करता और दूसरे मुल्कों की तरफ जाता है? तो अगर पाकिस्तान ईरान से गैस लेता है तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि अब उसकी एनर्जी की नीड्स पूरी हो रही हैं, दैट्स ऑल?
नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत बहुत उम्दा सवाल किया। वो तो एक ट्रांजिशनल पीरियड के लिए नेचुरल गैस होगी जो ईरान से बरामद की जाएगी, लेकिन यकीनन एक मुल्क को अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड किस्म का एनर्जी मिक्स बनाना चाहिए, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स भी हो, हाइड्रो पावर भी हो, रिन्यूएबल एनर्जी भी हो, सारी एनर्जी की दुनिया में कहा जाता है देयर इज नो सिल्वर बुलेट, यानी कि कोई एक हल नहीं है, एक बहुत बहुत अच्छा और उम्दा किस्म का बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स बनाना चाहिए। तो पाकिस्तान को चाहिए, अव्वल तो पाकिस्तान अभी अपनी नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहा है सुई की, और जगहों पर भी कुछ प्रोडक्शन है गैस की और ऑयल की, लेकिन पाकिस्तान के पास अक्सर माहिरीन का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा का पोटेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तेल और गैस के जखायर हमेशा उन इलाकों में पाए जाते हैं जो सेडिमेंट्री बेसिन, जियोलॉजी की जबान में सेडिमेंट्री बेसिन उसको कहा जाता है, और पाकिस्तान सेडिमेंट्री बेसिन के जुमरे में आता है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल के जखायर मौजूद हो सकते हैं। और ये बात भी मगर यहाँ पे आ चुकी है कि पाकिस्तान में शेल गैस, जो नेचुरल गैस एक खास किस्म की रॉक्स के अंदर ट्रैप हुई होती है, उसको शेल गैस कहा जाता है, जो थोड़ी सी मुश्किल है एक्सट्रैक्ट करना बनिस्बत आम कन्वेंशनल नेचुरल गैस के, लेकिन वो एक बढ़ता हुआ एनर्जी रिसोर्स है, काफी पॉपुलर होता हुआ फ्यूचर का एनर्जी रिसोर्स है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। फिर थर कोल के रिजर्वॉयर्स हैं, इसके अलावा ऑफशोर भी एक्सप्लोरेशन की जा सकती है, ऑफशोर पाकिस्तान के ऑयल और गैस के रिसोर्स हो, लेकिन एक्सप्लोरेशन के लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बैरूनी कंपनियों को आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब ये नहीं मालूम कि इस पर कितना काम हुआ है, लेकिन इस पर बहरहाल काम होना चाहिए, और पाकिस्तान के पास यकीनन काफी फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्वर्स रिजर्व्स मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, और बेशुमार पोटेंशियल्स हैं, विंड को भी हार्नेस किया जा सकता है, तो सोलर एनर्जी पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो बल्क होता है एनर्जी डिमांड उसको या न्यूक्लियर पूरा करता है या फॉसिल फ्यूल्स पूरा करते हैं, और इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए।
सवाल मेरा आपसे वो यही है कि अगर पाकिस्तान और ईरान ये पाइपलाइन मंसूबा कंप्लीट करते हैं तो जो गैस के पाइपलाइन का काफी हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरेगा। अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, पुरामन नहीं हैं, वहाँ भी शोरश ज़्यादा इलाके हैं। अभी हमने देखा कि हज़ारा जितने कबाइल हैं उनकी जितनी किलिंग हुई, उसमें जंदोला ग्रुप है या लश्कर जंगवी के जितने दूसरे लोग हैं, वो ईरान के साथ उनका उनकी नहीं बनती, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। तो वो जो गैस पाइपलाइन वहाँ से गुजरेगी वो भी तो इसी तरह ही है ना कि जैसे अफगानिस्तान में है।
जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल ये है, और इसका कंटिंजेंसी प्लान भी उन्होंने तैयार किया हुआ है। यह मैं आपको बताता चलूं कि दो एक अल्टरनेटिव रूट भी गैस पाइपलाइन का है, जो कि ईरान पाकिस्तान बलूचिस्तान से लेकर के वो फौरन ऑफशोर चली जाएगी, अंडर द सी जाके रन ऑफ कच्छ में निकलेगी, और एक पाइपलाइन की ब्रांच कराची चली जाएगी और एक इंडिया, ये ओरिजिनली कंटिंजेंसी प्लान में था, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए जो मेन आइडिया है प्लान ए, वो है ऑन शोर बलूचिस्तान से गैस पाइपलाइन को गुजारना, तो वो यकीनन खतरनाक है, और कुछ एनालिस्ट का यह भी ख्याल है कि जो रीसेंट सर्च आई है बलूचिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग की, वो एक रिटेलिएशन भी है उन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से इस मंसूबे के खिलाफ कि ये मंसूबा आगे ना बढ़ाया जाए। और जंदुल्ला के जो टेररिस्ट, मतलब जंदुल्ला का जो फॉर्मर लीडर अब्दुल मालिक रेगी पकड़ा गया था, उसको एग्जीक्यूट भी किया था ईरान ने, उसने एतराफात किए थे कि उसके CIA से और अमेरिका से ताल्लुकात थे और उनसे वो डिक्टेशन और सपोर्ट लेता था। तो जंदुल्ला जो है वो यकीन अपनी इस इलाके में कार्रवाइयां कर सकती है, और लश्कर जंगवी ने भी बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये एक थ्रेट है, ये वाकया एक थ्रेट है कि इस पाइपलाइन को, इस मंसूबे को सबोताज करने की ये तंजीमें कोशिश कर सकती हैं, और इस रिस्क को इन टाइम डील करना चाहिए।
ڈاکٹر ریحان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے ناروے سے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم نے بات کی پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر, اور اس میں ہم نے بہت ساری جہات کی طرف ڈاکٹر صاحب سے ایک ماہرانہ رائے لی. ہم نے ہسٹری جاننے کی کوشش کی کہ کب یہ پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اس کا کمپیریزن کیا دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ, ٹپی جو ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہے, اور اس کے علاوہ جو ایل این جی جو قطر سے لی جانی تھی وہ بھی تجویز تھی. یو ایس کا جو پریشر ہے پاکستان پر اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تفصیلاً ڈاکٹر صاحب سے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جتنے حکومتی اراکین ہیں بہت بیشتر, اور جتنے